آج نئی دلی سرسکتی کی نو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 6 سے ہو رہا ہے. 35 آج کا درس میں ملائکہ کے متعلق پرانی تصور پیش کیا گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا آخری الفاظ میں کہ آئندہ درس میں اس کے برعکس ایک حقیقت سامنے آئے گی, یعنی شیطان کا پرانی تصور. یہ آج یہ تھی کہ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. بنیادی زندگی کی جاذبیتیں اور سچ ہیں. قرآن کریم نے یہ بنسپتی کہا ہے کہ صرف تم حرام قرار نہیں دے سکتے بلکہ وہ تو ایسی چیز ہے جسے رکاوٹ چیلنج کہا گیا. تم سے پوچھو گے وہ کون ہے جو بنیادی زندگی کی کشت اور زینت کو حرام قرار دے جسے ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے کشت جاذبیت اسے ممنوع قرار نہیں دیا لیکن ان سے دھوکا کھا جانا یہ بات کہی ہے. یہاں سمجھ لینا کہ مقصود زندگی یہی کشت ہے, یہی جاذبیت ہیں. اسی دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. مقصود یہی ہے کہ دنیا کی جتنی مدا ہے جتنی زندگی ہے ان کو جس طریق سے بھی کیا حاصل کر لیا جائے. جو اس میں کامیاب ہو گیا سمجھ لیجیے کہ وہ کامرانی کی زندگی ہے. کسی میں ناکامی ناکامی ہے, اسی میں کامیابی کامیابی ہے. بعض وہ ہوتا ہے یہ جو چیزیں دیکھتی ہیں یہ استعمال کی چیزیں ہیں. متاع حیات دنیا ہے. مقصود میں جا تو منتہا اور منزل آخری نہیں ہے انسانی زندگی کی. تو یہاں کہا کہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے. اور اگلے ہے لڑا جگر گنا تم بدلا دل بھرور. اور دھوکہ دینے والا کوئی تمہیں اس بات میں دھوکہ نہ دے جائے. اور اس کے بعد کہا اب یہاں دھوکہ دینے والا جو ہے اس کا مطلب کہا انت شاطان ہے لگم عجیب شیطان ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے. کیا بات. ایک نقطہ اس کے اندر جو سامنے آتا ہے قرآن کا ہو تو لفظ کتنے عظیم نکات رکھتا ہے. بات بات کی ولا یغر رنا تم بیچ میں ہے دلّا دل بری دھوکہ دینے والا تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ نہ دے گا. کیا بات. اب اس کے بعد جو آگے بتانا ہے میں سمجھتا ہوں کسی توحید کی تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو بلوان میں وہ ڈبا دے والا ہے تو خدا کے نام پر تمہیں یہ دھوکہ دینے والا وہ دھوکہ نہ دے جائے صاحب. انہیں کو اس کا خان کہا جاتا ہے. اب آیا انہیں شیطان ہے ڈاکٹر محدود مبی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بس تفوض ہو ادو اسے دشمن بھی سمجھو دوست نہ سمجھو. یہ کیا ہے. اس دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے انسانی اگر جو ہم کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے بچپن کے زمانے میں تھا تو تجویز میں تھا پرانا خاروں کا زمانہ اور ابتدائی دور اس میں انسان کی تحقیق یہ تھی کہ وہ تو مطلق غیر مرئی قوتیں توانائی ہے صلاحیتیں کئی چیزیں جنہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یعنی وہ جو نظر آنے والی محسوس ہونے والی چیزیں نہ ہوں وہ ان کا تصور ذہن میں نہیں کر سکتا تھا. اور اگر تو ہم کہیں گے کہ آج انسان بہت آگے چلا گیا ہے ان کا وہ ایکسپرٹ تصور یعنی ان کو معصوم شکل کے اندر نہ رکھے ویسے ان کا تصور کرے اب بھی بڑا مشکل ہے. وہ اب بھی اس قسم کی حقیقتوں کو محسوس پتروں کے اندر ہی اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ کہا کرتا ہوں اگر تو ہے یہ بڑا مشکل کہ بچوں کو ابھی بچپن کی زندگی میں خدا کا تصور نہ دیا کرو. وہ بچے کو ایک تو ہم بڑے جو ہیں وہ بھی اس کا کوئی تصور ایکسپیکٹ تصور جسے ہم کہتے ہیں منظر جسے کہتے ہیں معصوم شکل میں تصور نہ آئے وہ हम नहीं कर सकते तो वो खुद क्या करेंगे। तो वो किसी न किसी किस्म का एक कहकर मासूम अपने जेल में रख लेते हैं सुधाकर, इससे वो घर चढ़ा ही नहीं बनती नहीं है बाजार उदाहरण के बजाय। और जब वो इस किस्म का तो सर्वर जेल में रख लेते हैं तो इस सर्वर को फिर अगली जिंदगी में जाकर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन करें क्या, खुदा का नाम भी तो घरों में लिया ही जाता है। और इसे तो समझा जाता है कि सब बच्चे की मजबूत तालीम बड़ी जरूरी है और वो खुदा से सीख दी जाती है। मैं कहा करता हूँ तो अखलाकियात के सिलसिला से दिए ये तालीम खुदा के मुताबिक बात बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चे की। तो इसी तरह से मैंने अर्ज किया था कि मलाइका के मुताबिक भी तो जब तक मैं देवी देवताओं की शक्ल के अंदर से नहीं लाओ, महूस शक्ल में नहीं लाओ, महसूस शक्ल में नहीं लाओ तो सबर ही नहीं कर सकते। तो ये आग में अमर की पैगाम रसानियाँ, आग में अमर की कुवतें और तवानाइयाँ, सबक तकदीर अमर करने वाली खुदा के प्रोग्राम की तवानाइयाँ, ये क्या हो सकती हैं हम समझ ही नहीं सकते। हमें नाम आदा उनका कोई महसूस करके ध्यान लगाना पड़ता है और किसी से भी कुछ तरक्की किस तरह होती है। कुरान बड़ा ऊंचा लगाना चाहता है इंसान को, इसमें ये नहीं कि बुद्ध प्रस्ती को बुलाया देते थे उसको बहुत बड़ा दुख पहुंचता था, वो उसको असद आता था कि हाँ मेरे मुकाबले में एक पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हैं, पूछते गुरु वल्ला हो वंदी वाला लालमी। जब तेज इंसान दुनिया में नहीं था वो उसको पूछ रहा था तो पूछने की तो बात ही अलग होगी। बात सारी इंसान की है, वो इंसान के जुर्म को स्पष्ट सतह से बहुत ऊंचे बनाना चाहता है। वो हकायक जो है उनको हकायक की तरह समझने के लिए इंसान के जुर्म को तैयार करता है। हकायक को महसूस कहकर उसके अंदर नहीं, ये तो निचली सतह का इंसान भी ये कुछ करेगा। तो मलाइका के मुताबिक मैंने यही अर्ज किया था कि कुरान बहुत ऊंचा हो गया और मैंने गुजारिश किया था कि आप आहिस्ता इसका साइकोलॉजी कुछ पहुंच रही है इन चीजों की तरफ। आप आराम होंगे तो आज तक जो सबसे बड़ी चीज जिसकी तहकीक हो रही है वो चीज मैंने किसी जगह इशारा तन कहा था, इंसान के दिल में एक सवाल पैदा होता है। अब उसके लिए भी दिल का लफ्ज हमने रखा हुआ है, ये दिल नहीं है जो धड़कता है, चुप हो जाता है, वो कचरा खून होता है। लेकिन वो है क्या दिल? मैं आपको एक तरफ ये बड़े से बड़े फिलोसफर भी ये नहीं कह सकता कि वो है क्या चीज अंदर। माइंड कहा उन्होंने एक बैठा दिल, माइंड को मुतालिक टाइम नहीं हो सकता कि वो है क्या। लेकिन ये तो जरूरी है ना कि मैं इरादा करता हूँ इसको पकड़ने का, मेरा हाथ इसको पकड़ लेता है। इस हाथ को कोई कहता है ना कि इसको पकड़, हम किसी कहते कहानी कहते कि किसी बाहर के इंसान को है अपने आप को तो अपने आगा को तो हम कहते नहीं है बगैर कहने के जो हाथ क्यों चला हुआ। ये एक मसला हो रहा है कि जो कम्युनिकेट करने वाली क्या चीज है जो दिल के इरादे को हाथ तक पहुंचाती है, तो ये सर और कुरान में जो मलाइका का मादा आला का बताया उसके माने का नाम दिखा मुझे उनका किताब आज पर इस किताब से आ गई है मेरे सामने माइंड एंड बॉडी की व्यू। सुबह ये लोग बहुत कोशिश करते हैं इसलिए कि मुकलत नहीं। तो मलाइका की बात तो यूं हुई, अब आगे आयात का काम। तो मलाइका तो फिर भी जमा का सूबा था, बहुत से थे, कोई शैतान तो बहुत का सूबा हुई थी, उसे को बनाया उन्होंने। अब सोचिए तो कजर ये है कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई इंसान है उसके साथ शैतान होता है और उसको बरगलाता है। एक पदार्थ दुनिया के हर कुत्ते हर घोषे के अंदर जहाँ इंसान है उसके साथ वही एक इंसान हर इंसान के साथ। मैं तो कभी कभी हैरान रह जाता हूँ कि ये जो अपने फिक्र के तहत हमारे ऐप किए तो हम किस किस्म की बुनियादी गलती नहीं गुमराहियों के अंदर पड़े हुए हैं। हजार वर्ष तक किसी ने सोचा नहीं तो हम तो क्या कह रहे हैं। अजीरा ने मन दुनिया में बजा वक्त हर जगह मौजूद होना, कुरान ने कहा है सिर्फ खुदा की सूरत होगा महातुम ऐना महातुम तुम तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ, ये सिफत खुदाबंदी हो اور ہم شیطان کی حیثیت میں بتاتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی انسان ہے اس کے ساتھ ہے اللہ سوچتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے ان چیزوں کو سوچنے سے پتہ چلتا ہے چلا رہا ہوں وہ چیزوں کو ہر شخص کے ساتھ انسان ہے ایک شیطان ہر جگہ کہیں بھی ہو جب میں نے عرض کیا ہے کہ خاص طور پر خدا نے اپنی یہ قوت بتائی اور یہاں ہم شیطان کو یہ قوت قوت ہی نہیں تھا یہ تو پتہ نہیں میں اسے کیا کروں مہاجن کا مہاجن تھا خارج کو دامن بھی کیوں ہوتا کہ جہاں سے انسان ہے وہاں شیطان موجود ہوا باہر تو رہنا نہ تم تم یہ خدا سے بھی نہ کہو تو شیطان کے لیے کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا نہیں تو اس کو کیا کہہ رہا لیکن چیز قرآن نے بتایا یہ کہ یہ ابلیس ہے شیطان یہ کسی کو کیا راندا پردا ہو گیا قیامت تک جو بھی چھٹکارا ہوا ہے پھر وہ دین اور ادیم اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس کے لیے پکارے جاتے ہیں گنا کیا تھا اس کا جرم کیا تھا اس کا جرم یہ تھا تو وہ پھر میں دوہرا دوں کیونکہ کئی بار میں نے پیش کیا ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے دین کی جرم یہ تھا کہ آگوں کو بھی لگنے کی نہ کیے خدا کے حکم کی نافرمانی اتنے سے بھی عالم سے پوچھا تو تم نے تو کیوں کیا ربنا ظلمنا انفسنا مجھ سے بھول ہو گئے مجھ سے غلطی ہو گئی میں لازم ہوں مجھ سے یہ ہو گیا اس کرم پر اس لغرس کو میرے دور کا اس نے کہا کہ تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا تم نے اس بات سے ندامت پیدا ہوا اس سے انسان ہے اس بات اس لیے جاؤ اب تم آئندہ اس روز کو نہ چلنا اس سے چلنا اصلاح ہو جائے گی تین کام ہو گیا اصلاح تم سے بولے تو کیا کیا انہیں حساب میں نے کہاں کرنے والا تیرے حکم کو بغیر پتا نہیں ہوتا یہ تو دونوں کر رہا ہے میں ذمہ دار نہیں بات تو اپنی ذمہ داری کو دور نہیں کرتا قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ نہیں بول پتا ہم کیا کرتے ہیں اس نے کہا تھا رانا کرتا ہوا جب بھی کسی سے کہو تو یہ تھا نہ بولا سب کا کام نہ مردود جو ہے کیا کرا لو کہیں انسان کے ساتھ کریے کیا بہن کو میرے پر لگا دیے سر بہن میں بات تو میں ذمہ دار نہیں جو لذت مجھ سے ہوئی اس نے خدا ہوتا دیا تھا کہ تم ذمہ دار ہو ہم اسے کہہ دیتے ہیں تم ذمہ دار تو ذمہ داری کو قبول نہ کرنے سے ہی تو کام موجود ہوا تھا تو ہم تو ہر آن ہر سانس میں یہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کیا کام ذمہ دار ہے بات تو وہ نہیں کر رہے ہیں جس سے وہ مردود ہوا تو ہم مزدور بار بار خدا بندی ہو جائیں گے وہ مردود ہو گئے یہ جرم اس نے کیا مردود تو ہر آن ہم کرتے ہیں سارے وقت خود کرے گا نہیں کرے گا کام کر ہر شخص میں کہتا ہے دوسرے کی اور اسی سے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کو خیر و شر کا مسئلہ کہتے ہیں اڑھائی ہزار سال جو انسانی ذہن اس گفتگو کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے آپ کے دودھ سے پیچیدہ چار روٹی چلی جاتی ہے جیون ایون کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا خیر و محض ہے تو اس نے شر کیوں پیدا کیا اور اگر شر پیدا خود ہو گیا ہے تو پھر خدا کا اس کے اوپر کوئی اقتدار نہیں بیٹا سر اگر اس کی مرضی سے شر پیدا ہوا ہے تو وہ خالق کر دیا تو جو شر کو پیدا کرنے والا ہے وہ شر کا خلاف کرا ہوا اور اگر اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ خبر مطلب نہیں ہے یہ بڑا اہم انجما اس کو کہتے ہیں مہمہ فلسفیوں کے ہاں قرآن تو یوں بات حل کر دے ہزاروں ہزار سال کے پل سے بڑے بڑے لائبریریوں میں سمے بھرے ہوئے اس ایشو کے اوپر جو میں جیون کی کریشن کے مسئلے کے اوپر سارے سر کی تقریر کے مسئلے کے اوپر اور یہاں آ کے رک جاتے ہیں کہ یا وہ قابل مطلق نہیں یا وہ قابل مطلق نہیں جب آپ بھی شیطان کے باہر کی ایک ہستی پر قرار دے دیں گے اب اس کے لیے مطلب ہستی یا شخصیت یا کتابوں کو زیادہ کہاں پڑتا ہے نا سمجھانے کے لیے لیکن بہرحال कोई बस्ती है तो उस किस्म की जो बाहर है उसे करार दे देंगे तो वो तो सर हो जाएगी और वो सारी सर काटा पीटा है करता फिरता खुदा देख भी रहा है और जो मानते हैं आप तो सादा उसने हारे को किया तो दादा हम किसी ने दावा किया है तो दावा भी किया हुआ छोड़ दिया इंसान के पास उसकी मरीज में प्रधान पैदा हुआ है आकर रुक गए आप तो खाले के सर है वो सर पैदा करने वाले और उसके बाद इतनी तकलीफ के सर से एहतियात करते उसके पास न जाओ जो हो जाएगा तब यही पूरी पैदा किया और उसे कह रहा है इंसान को भी इतनी न जाना तो उन्होंने पैदा ही क्यों कर दिया थे ये है वो तो संस्कृतियों पर ये चाह रहा है ये सवारी नहीं ये तो और हाउ नहीं ये इंसान को भी है अब ये रहा कि जो पैदा करने वाली बात है वो क्या कायनात की कीमत है जिन्हें हमने मनाया था साहब या फजून मालूम बहुम जब तक जरूर कायनात की कीमतें जो है जिनको उसने मराया का भी कहा उनको इसका इख्तियार नहीं दिया गया कि हम उनसे जो कहें उसकी खिलाफ वर्जी कर सकें चिंतानी नहीं हमने कायनात की किसी कीमत में किसी शहर में जिसका इंसान ही नहीं कि वो उस कानून की या उस हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी कर दे जिसके लिए उसको पैदा किया गया है यानी कायनात की कोई साहब इख्तियार नहीं है इंसान साहब इख्तियार और साहब इरादा साहब इख्तियार के माने ये होते हैं मैंने कहा था ना कि तू अगर तुम्हें चीज जिसके सामने जो मौजूद हो रास्ते अबैना और नजबन दो रास्ते उसके सामने हो गलत भी हो और सही भी हो बता दिया जाए तो ये गलत है ये सही है और उसके बाद कहा कि हम अब उसके दखल नहीं देते कि वो कल को कहे के साथ मैं जिम्मेदार नहीं था इस रास्ते को चलने के लिए तूने मुझे करा दिया कहा मैं कुछ नहीं करता ये मजे मारते तो मेरी मसीहत मेरे मैदान में है यहाँ तुम्हारी मसीहत काम करेगी ज्ञान का रास्ता जीत अख्तियार करो गलत रास्ता अख्तियार करोगे तो ये सर का रास्ता होगा तुम्हारे लिए ये रास्ता अख्तियार करोगे तो ये सर का रास्ता ये रास्ते हैं सर और सर के जो हमने क्रिएट किया हुआ सर नहीं है हमारा तुम इसे अख्तियार न करोगे ये सर खत्म हो गया तुम्हारे लिए तुम इसे अख्तियार कर दोगे तो ये सर को खुद कबूल किया तो इंसान का जो खुद अपना इरादा और अख्तियार है जब वो कानूनों अहकामों अखबारों खुदाबंदी के मुताबिक चलता है तो जिसके लिए मलाइका की सिफत भी है खुदा का कुर्ब भी है खुदा जैसा होने की एक तमन्ना है इंसानी हद बसीरियत के अंदर और अगर वो अपने अख्तियारों इरादे से उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसका नतीजा सदा हुआ सर तो सरल ही है सुनवाई तो है डालते तो ये तो इंसान के अपने इख्तियार और अपने इरादे के इस्तेमाल का नाम है ज्ञान से रास्ता ये इख्तियार करे तो शर जो है ये सरव है ये चिंगारी है और शैतान जो है ये चीन के नून है भड़क उठने वाला छोला इंसान को जज्बात दिए गए उन जज्बात की तहबीयत ये है कि जिस वक्त किसी को गुस्सा आता है हमने से वही उसको कहा गया है जिसके माने भी पिटूला और हरारत और सरपेटी होती है गुस्सा जब आता है तो और चीजें तो अंदर की छोड़ दीजिए दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है इंसान का ये सोलह इस किस्म का होता और जिन्हें दिमाग पर जिस तरह से उस वक्त भी महूस कर देता है जला देता है वो तो हम सबकी देखने की बात उसके में हो क्या रहा हो वो जो मुकर करते उसके लिए जो दूध या सदर थी उसको छोड़ के जो सर्कस हो जाता है एक दूसरे को उसे इस्तेमाल करना चाहिए था एक कमीरी काम के लिए ये उसके खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रहा है अपने इस जज्बे को सर्कसी में कर रहा है चुंडी है तेजी है सोलह शक्ति है मुश्तरी है ये जो इश्तेहाल है इंसान के अंदर आ जाता जनता को जिस हद तक रखना चाहिए जब उसको वो आगे बढ़ जाता है तो ये सदाना है अरबी जुबान में जिनके माने हैं कि सोलह का मुस्तैद हो जाना ये इंसान के अपने ही जज्बे की बात। इंसान के हर फर्द को अपने जज्बों का इस तरह से हदूद फरामोश हो जाना परफेक्ट हो जाना कानूनों अखबार खुदाबंदी के खिलाफ चल पड़ना ये इंसान हर फर्द की अपनी चीज है। हर फर्द उस वक्त खुद अपना कप्तान आप होता है क्योंकि एक कप्तान नहीं है जो सारी दुनिया में हर इंसान के साथ होता है। हर फर्द के अंदर ही होता है और उसको प्यार नहीं होता जीता है तो उसको बताया रखे तो उठने ना पाए और जब भी जरा सा भी उसको बात किया तो फिर सोना है भरत उठता है। अब उसके बाद पुराने करीम की खसूसी गौर आती मजदूरी किताबों में भी और मैंने देखा है दूसरी जुबानों में भी शैतान का तो सफर तो हर जगह है लेकिन उसके लिए दर्द एक ही है और वो वही है जिसके माने शैतान के समझ लीजिए सेकंड जिसको कहेंगे डबल जिसको कहेंगे पुराने करीम में उसके लिए दो लफ्ज है शैतान भी है और ये दो अलग अलग नहीं है एक ही सिक्के को दो रोक ये बीच के दो नाम अलग अलग थे। इस बार के साइकोलॉजिस्ट ने उनके यहाँ की एक थीरी है जो थीरी ऑफ अग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन अजीब चीजें आ रही हैं अजीब निशानियां अल्लाह ताला दिखा रहा है अपनी किताब के दावी को साबित करने के लिए और प्रार्थना निर्दय कार्यों को सनम खाना तो वहां बैठे हुए मुल्क दो दिन जो आपके इस्लाम या कुरान से वापस भी नहीं है वो रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो है कि जब भी इंसान का गुस्सा एग्रेशन जिसे कहते हैं बालादस्ती का हदूद फरामोश हो जाना उस हद से आगे बढ़ जाना जिसके अंदर उसको रखना चाहिए था फिर यहाँ का साहिल को तोड़कर सैलाब बन जाना इसे व्यक्ति कहते हैं। वो कहते हैं इंसान के अंदर जो चीज साइकोलॉजिकल है तो हर एग्रेशन जो है जब वो खत्म होती है उसका नतीजा फ्रस्ट्रेशन या मायूसी होती है। शैतानों के माने हैं भड़क उठने वाला अरबी जुबान में कुरान में इब्लीस के माने हैं मायूस हो जाने वाला। हर एग्रेशन के बाद उसका अंजाम जो है फ्रस्ट्रेशन है उभरने वाला गुस्से में इश्तेहाल के लिए जो शैतान है जब फ्रो हो जाता है तो आप देखते हैं आप अपने किए पर खुद लागू होते हैं आपने क्या कर रहे पागल हो गया बिल्कुल पागल हो जाता आदमी दूसरे भी कुत्ता के यहाँ मियाँ बीवी में वो कुत्ता होता है उसको तो पूछे नहीं रखते जब कमजोर सामने से नहीं जाता अंदर तो पूछो नहीं किया बाला दस बन जाता लेकिन उसकी शैतानत वहाँ होती है महसूस कर रहा होता है कि मैंने गुस्से में ये कुछ कहा उसका अपराध नहीं करता बीवी तो सामने अपराधी होती हो जाती है मियाँ साहब की ये जो है हर इश्तेहाल का जब वो पीछे लौटता है तो वो अपने सतह के ऊपर जाकर नहीं ठहरता उसके नीचे चला जाता है उसका लेवल इस पता 98 से 96 तक चला जाता है वो टेम्परेचर जो होता है। ये जो नीचे चले जाना है नदामत है उसकी मजबूसी है उसकी फ्रस्ट्रेशन है उसकी उसके लिए अरबी जुबान में ये नीच के लफ्ज से माना मायूस तो वो जो कभी इसको शैतान कह रहा है वो उसकी तबीयत है जब भी इसका गुस्सा हजूद फरामोश होकर मुस्तैद हो जाता है और जब उसी को इब्लीस कहता है तो उसके बाद वो कहता है कि जब ये ठंडा हुआ गुस्सा तो गोसा खुद ही इस कदर मायूसी पाई हो तो हर शैतान का दूसरा जो सिक्के का रुख होता है साउन का वो मायूसी होता है इसलिए वो गलत आए और ये कुरान की मुनफरियत इनफरादियत है अजीजा रहमान क्योंकि किसी एक के लिए अब मैंने कहना हुआ कि वो कर सकते कुछ दुकान को आ जाता था मैं क्या करूँ उसके बगैर उस एक के लिए जो बस जो है ये कुरान के अंदर है कहीं और दुनिया में नहीं मिलती या आज के जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको दूर ला रहे हैं। मैंने अभी अर्ज किया कि शैतान का अर्थ कोई अस्थि नहीं पूरे इंसान के अपने ही अंदर के फैसले का नाम गलत फैसला जब ये खुदा के अखबार हुआ उसकी हजूर मुकर की हजूर से फर्केट हो जाता है जो खुद उसका शैतान उसको काम कर रहा हो। जब उनके सामने झुका हुआ होता है तो ये मोमिन। अब देखिए कि ये चीज सही है, कुरान किस अंदाज में इस बात को बयान करता है कि शैतान खुद तुम्हारे ही अपने जज्बात का नाम है, कुछ बाहर की चीज नहीं। तब चीन में मैं जाऊंगा तो इसके लिए बड़ा वक्त बरसा दू, लेकिन तब चीन की बजाय मैं मुख्तसरन एक असूली चीज जो कुरान ने बयान की है उससे ये पूरी वजाहत सामने आ जाती। मैं सिर्फ उसी को देख करूंगा। सात बटा बीस में वो जो सिस्टर आदम है तमसील कहा हुआ शैतान शैतान ने उनको बुलाया, वसवसा उसके अंदर पैदा किया, गलत रास्ते की तरफ चलने के लिए इशारा दिया शैतान ने, और वसवसा का बस ये बताया गलत रास्ते की तरफ चलने के लिए थोड़ा सा इशारा भी होता है। ये शैतान यहाँ कहा है कि उसने उन्हें शैतान ने ये किया, इसे समझ लीजिए इसी से सारी इमारत इस बुनियाद पर जानी है। शैतान ने वसवसा पैदा किया उनके दिल के अंदर 7 बटा 20 और 50 बटा 16 वाला का जो खलक में इंसान, हमने इंसान को पैदा किया वह नावे मात वस्व से ही नक्शे हूँ, और उसका अपना नक्श वस्व से भी उसको लाता है, हम उसे जानते हैं। यानी एक जगह कहा है कि वसवसा शैतान ने, और यहाँ कहा है कि इंसान का अपना नक्श खुद वसवसा उसको पैदा करता है, तो बात तो साफ हो गई। मैं कहता हूँ किसी और दलील किसी और समझ होगी की जरूरत नहीं, दोनों आयतें कुरान की मौजूद, वसवसे का लफ्ज मौजूद, वहाँ खाल मौजूद है शैतान के जोर जोर करता, उसी तरह से जहाँ उन्हीं माना में मौजूद है कि तो वसवसे को ही नक्शो हूँ कहा हमेशा से लड़ू हो गया कि ये वो बाहर वाला नहीं है, ये कुछ उसके अंदर वाला उतर रहा है क्या नजर ये बनानो अतर हाथ जमीन हमको किसान हमको ज्यादा करीब है, हमको जानते देख लेते हैं वाली अंदर की बात। इससे बड़ी सनद और जमीन और कौन सी नक्शो हो जो है इंसान का अपना ही न, यही जब उसको गलत रही के ऊपर उकसाता है, वस्तुता पैदा करता है, उनको बड़ा सुन देता है, इशारा करता है, असल में वो है अजीब लफ्ज है उनका वसवसा जो है वो शिकारी डरे पाए जाते हैं। और यहाँ तो कभी आप लोगों ने देखा भी, हम गांव में देखते थे तो जरा सी एक चीज होती ऐसी आवाज भी पालते थे, वो पूरे चिंदे होते हैं वो इन आवाजों के ऊपर आते हैं, उनकी तरफ वो समझिए कि हमने की जो चिंदा है जिसकी की आवाज है, तो ये जो इस किस्म की आवाज निकालनी होती है ना ताकि वो परिंदे जो है आवाज के ऊपर जो आ जाए, ये बुनियाद होती है वो इस किस्म की बड़ा किसी की मारना हर कुछ पढ़ना भी चला है उस तरफ क्या बात है किसी पानी है। अब यह मसला कुछ इंसान जिसे कहते हैं कि मैंने ये कहा मैंने ये किया ये मैं कौन है, फिर वही बात आ जाती है। मैं वहाँ बैठा था मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर ये बड़ा सामने का उठ के चला गया कि इसकी घड़ी में जेब में डाल लू, तो चला गया मेरे हाथ में घड़ी। ये कौन है जिसने ये ख्याल किया कि मैं ये कर लू, इस मसले को छोड़ दीजिए। कुरान इसको नष्ट ही तबीर करता है, अगर इंसान एकदम बहुत पीछे है मुतमिन कर सके कि ये नष्ट क्या चीज है, लेकिन वो तो बारह इसमें किसी अफलातून के दिमाग की जरूरत नहीं, हमने जो आशा को जानता है कहता है मैंने जो कहा मैंने जो किया मेरा इरादा हुआ, और फिर उसके बाद फिर इरादे को दुर्वसार लाने के लिए उठा भी बोला भी चोरी भी की डांडा भी मारा कदम भी किया, ये तो सारा कुछ मेरे हाथों ने मेरे पाँव ने किया, ये करा रहा है अंदर के दुआ। ये जो पुराना वादा है वो है साहब अख्तियार इंसान, वो जो फैसला करता है तो मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो जब भी वो आसामों अखबारों खुदाबंदी के खिलाफ फैसला करके अपने कुतों को इस्तेमाल करता है तो इंसान का नक्श जो है वो शैतान बन जाता है, और उसके बाद जब उसके अवाकिब और अंजाम और महाल सामने आते हैं, नुकसान रखा बात सामने आती है, तो फिर वो उसको मजबूर हो जाता है तथा नीचे आवा पूर्ण सोच होती योग इंसान का सिद्धित होता है। इंसान या मोमिन वो है कि जिसके जज्बात उस सतह के ऊपर रहे जिसका रखने के लिए उसे खुदा दे। आगे बढ़े तो खुदा को किसी फैसले प्रोग्राम या हुक्म के मिलने का लाने के लिए आगे बढ़े, पीछे हो गई तो किसी सूरत में पीछे हो। इसका कयाम भी खुदा की रजगुन के लिए हो, इसका सिकदा भी उसके आसाम की तामीर के अंदर। फिर तो है वो अपने मोहन और जब अपने किसी मफाद हरों या आर्मी या तमन्ना के लिए उसको इस्तेमाल करो और वो हद से बढ़ गए तो शैतान है। नतीजा उसका माहौल जो है मायूसी है, नदामत है, जिंदगी के लिए कौन सा एक जगह उसने कहा है 36:7 सूरह यासीन। आपको मालूम है वो यासीन सूरज का सूरह यासीन तो वो हमारे यहाँ वो जो मरमद का उसको पढ़ाते हैं ना, क्या यासीन वो आशा बनूंगी जब जान लेंगे क्योंकि जो वो हिंदू है मैं मंदिर से फल ला दूंगे। हिंदू का ये है जब देखो ना मजबूत हो जाते हैं तो उसको उसको मरीज को चार पाल से नीचे अब वो तो नीचे भी उन्होंने बताया तो उसने समझ लिया कि आप मेरी बात आ रही तो नहीं भी आने होने तो सबसे भी मर जाना तो उसी मंदिर को तो फले तो मिलना होंगे उतरे रहने होंगे तो यासीन ये देश ना लग रहे थे कहने को आ गया यासीन साइकोलॉजी तो नहीं थे उसने जिन पावर पर काम कर रहे थे ना तो वो भी खत्म कर दो क्या कि आप यासीन हूँ आज क्या बात उसका क्या उपाय कि तुम्हारा तो कितना ही काम रह गया कुरान से कि आज यासीन हूँ आसान तो नहीं ये जो जिंदगी बस खुदा की किताब की उसका मतलब इतना ही रह गया है कि थोड़ी बहुत रहमत रहती है जिंदगी की वो कुरान की आय सुना दो और भी खत्म कर दो उसके तो यासीन ये होती। तो आपको बताओ कि मंदिर खानदान में सलाह मौजा की जेगमार जो थी वो जब पढ़ती थी कुरान करीम या किसी को कहना होता था ना तो यासीन नहीं कहती थी, ये तो भक्ति नहीं होती है ना कि यासीन का लफ्ज ही कहना। इसका नाम था ननानी सूरत को यानी कि ननानी लाना चाहूंगा ये ननानी सूरत मुझे याद आया उनके यहाँ ये सूरत थी सूरह यासीन 36वीं सूरत। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन वअरूनु अदुव्वुन हाजर सिरातुल मुस्तकीम मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया अब कई गोबीन जो दस आया उस पर उसके माने आप जो है परस्तु की अवलादन करते लेकिन वो तो माने देखेंगे नहीं तो शैतान की तुमने इबादत न करना शैतान की इबादत तो कोई भी नहीं करता मुसलमान लोग आपको मालूम है वो बदले को तो माने उसको अपना आसन के फजूर करना उसकी मासूमियत अख्तियार करना उसको कहने को चलना। हमने तुमसे ये कहा था कि शैतान की मासूमियत अख्तियार न कर तो यहाँ तो शैतान की बात करी कि वह 36 बरस का और जरा आगे 45 बरस साल बनते ही इसे ध्यान में रखिए कि यहाँ कहा है कि शैतान को अपना खुदा न बना देना बस यू तर्जुमा कर दीना शैतान को अपना खुदा न बना देना। और यहाँ कहा है कि अपरा होता मन तकाजा उदा हूँ हवा तुमने उसको भी देखा कि जिसने अपने जज्बात को ही अपना खुदा बना दिया कुछ साफोगी बात इंसान के अपने जज्बात ही है जब उनको वो अपना इरा बना देता है अपना खुदा बना देता है इनकी मासूमियत अख्तियार करता है करता वही है कि जज्बाती तौर से उसके जज्बाती से कहते वहाँ इसका ना उसको शैतान कैसे पुकारा है यहाँ हवा हो कैसे पुकारा तो वो है इंसानी नस्ल का जो हमने ये कहा था कुरान ने खुद बता दिया कि ये जज्बात से मतलब है। इंसान जज्बात को जब खुदा बना लेता है तो फिर उसका नतीजा अगली बात की कई आदमा बकर तो गजियत ये होती है जब ये अपने जज्बात को महरूम हो जाता है यूँ कहिए कि इसका शैतान इसका साहूब आ जाता है तो फिर इल्म असल के बावजूद अंधा हो जाता है बड़ा हो जाता है पूरा हो जाता है तबाह हो जाता है। इल्म के बावजूद जज्बात जब गालिब होता ये है शैतान का गालिब आना। तो पहली चीज जो मैंने अभी अर्ज की है जिसका समझना बड़ा ही जरूरी था कि ये कोई बाहर की हस्ती नहीं इंसान को अपने अंदर जज्बात उन बात को अगर खुदा से मुकर्र की हुई वजूद को आगे बढ़ने दिया जाए, बेबाक कर दिया जाए, प्रकट कर दिया जाए तो वो स्वतंत्र है। यही इंसान का अपना स्वतान है जो उसके अंदर बाहर नहीं है। कभी बड़े यकीन अंदाज में बात करता है। उस बात को जो आपको याद है कि मैं इसके साथ लाता हूँ, कहा है कि तीन साल की बात आ गई जहाँ का अब दूरी प्रतिबंध एक एक लग्न का देखने की काबिल होता है जीवन अब दूरी प्रतिबंध। ये जो खुदा की पहली जिसे मैंने कहा था पता नहीं उसने कहा है नबी मस्त दीन में लाना दूरी प्रतिबंध जहान के कायरात के जब अब से बाहर गाओ जमीन पर दो बे हंगाम दीबंध। इस कायरात ने देखा बिल्कुल ठंडी कोई हंगामा नहीं किसी किस्म का, कोई तपिश नहीं, कोई हरारत नहीं, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो वो इब्लीस के शैतान से जो मुखातिब कर चुके हैं कि बगैर अब जाने ना सोगो पुजा दू तुम बताओ कि हमारी जान के सिवा इस कायरात के अंदर कहीं तपिश और हरारत थी कहीं भी नहीं थी, इसलिए तुरा अब आपस में मार आखिरी होंगे। अरे आप तो थी ही ना अंदर कायनात में कहीं और थी ही नहीं। तो तेरे मुझे तो ये कहा जाता है कि तुम आग से पैदा किया तो ये आग भी कहाँ से थी खुदा ने जिसको तुझे पैदा किया, कायनात में तो हमारे पीने की सलाह आप कहीं दी ही नहीं, तो हमारे ही पीने को देखते हुए तेरी तकलीफ उनसे हुई क्या कुछ जो बंदा आग लगा चाहिए। अब जो तो हुआ एक फर्द शैतान, और अगर इस किस्म के बहुत से अपराध करते हो जाए तो फिर ठीक है। एक तो हमारे यहाँ उसको तो एक बड़ा शैतान कहते हैं पंजाबी के ना बाकी नहीं छिटेंगे बंदे आगे जिन्हों ने उतनी निश्चय कौमों की कौमी हिंदू शैतान शैतान की पार्टी गुरु उसका। तो जब कौमों की कौमें जब शैतान बन जाए कितने शैतान इकट्ठे हो जाए कला ही मान लो उन्ना के रस्तों की वो कर दे गया इसका हवाला आ गए हैं इतनी अगर 1958 बता उन्नीस इसका हवाला आ गए हैं वो शैतान हवाले आ जाता है उनके ऊपर उनका शैतान करता क्या है वो क्या बात है। आप देख रहे हो गुस्से में आदमी सब कुछ बातें भूल जाता बिल्कुल होश नहीं होता उसको पागल हो गया होता गुस्सा आज भी जुनून होता है जीवन में। अगर वो बड़ा आगे बढ़ के मुस्तकिल हो गए तो पागलपन करते हैं वो भी जुनून होता है भूल जाता है आदमी कहा वो करता उतना ही है कहा सा हम जिक्र खुदा के कवानीन जो है उनको भुला देता ये कौन है इलाहों का हिल्म शैतान अकेला ही नहीं कौमें ये कुत्ता दूसरी कौमों पर गालिब आ जाती है कोशिश ये होती है कि वो खुदा के कवानीन को प्रतिष्ठित कर ये किस तरह से गालिब आती है ये कौमे दूसरी कौमों पर मकलूम कौमों के ऊपर क्या क्या तरीके अख्तियार पर क्या बात 17 बटा सौ वो है ना मकान जो है वो तमसीली अंदाज में आदम और शैतान बकर दिया इतनी बड़ी बात हम तो खासियत भी है हमें इतनी बड़ा तो रंगा दरगाह बना रहे हैं पता का नहीं हम पहली चीज ये है कि आवाज के जरिए प्रोपेगेंडा के जरिए टीवी के जरिए रेडियो के जरिए देखना किस तरह से इसको बरबुलाता है करते जो इंसान काम निकलेगा ये भी बात मुझे करनी तेरे कवानीन से उसको वाजिब करना उसके बराबर जो अख्तियार करनी है मैंने पहली चीज तो ये है कि प्रोपेगेंडा किया जाएगा उनके मुल्कों का सजा हम वायर करने के बाद वजलिप आ गए हम बेखैरों का रुझाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो फिर द्वारा फायदे लेकर चढ़ाई भी करूंगी फिर हो जाएंगी तो फिर क्या करूंगा। हर वक्त तो पूरी फौजों के जरिए से तकल्लुक नहीं जमा रखना पड़ता ना मशहूर कौन या मशहूर रास्ते के ऊपर अपनी हुकूमत को
सवार रखने के लिए आधार को भी इस्तेमाल करना पड़ता, क्या करूँगा सारे फुलफिल अनवर तो पार्लियामेंट की इस किस्म की बना हुआ मैं तो उसमें दोस्तों वाले 51% मिला है ये सारे का यानी उनको सही करूंगा मैं उसमें लेकिन दोस्तों वाले मिला हुआ है तो कानूनी के जरिए से इनको सवाल करूंगा दूसरी जो अभी का जमान आजाद है ये सरकार के जरूर है ये कानून है ये करूंगा ठीक है ये तो जो मौजूद जनरेशन है उनके मतलब कुछ निदान कर दिया कैसे करोगे ऐसा माशी और इकतदी शिकंजों में इनको जितने गए कि ये हिल न सके उसके अपने पाँव के कभी खड़े ही ना हो सके ये करूंगा ये तो मौजूदा नस्ल को करूंगा और फिर वर्ल्ड और औलाद उनकी आने वाली नस्ल को तालीम ऐसी दू तो वो पैदाइश ही मेरे मासूम का था ये करूं किस तरह से जो मेरे झांसे में रहे जो वाइड हूँ ऐसे सबल भाग दिखाऊंगा उनको इस भेद मुरंगों के अंदर सब कुछ नहीं है ऐसे वादे करेंगे हम इनसे नमाज आए तो हम उसका स्वाद उनका पूरा कुराज का था ये लग जाता है क्योंकि सारे उनके चालू और राग और ये सबल दाल सब के सब होगी ये धोखा नजर आए लेकिन ये धोखा देने में अपनी हर मुमकिन कोशिश कर जाएंगे ये अफवाह है अजीबा में मन जिनके कुरान ने हिंदू पठान कहा तो आप दूसरी की कितनी अब ये नजर आया कि कितनी बड़ी कीमत है शैतान की लेकिन मैंने जैसा हल किया है ना कि वो शैतान की बाहर की बात नहीं है हर जगह जो कुछ करता है तो उसके जज्बात उसके ऊपर गालिब आ जाते जुनूद शैतान जो है ये भीड़ से जुनूद जो है ये कौन जो इस किस्म की है वो की है तो वो मासूम कामों को इस तरह से दबाती ये शैतान में शैतान के लश्कर करता है कुरान इस तरह से आते हैं तो तब तबाह होने वाली बात है आदम के सामने ये सारा कुछ हो रहा था और वो सुन रहा था निहत्ता देश परोसा तो वाकई में तो कहाँ उठा होगा कि अच्छी माफी मिली हमें अपने हाथ को छोड़ दिया आवाज दिया और किसके पास में डाल दिया कहा जो बढ़ाया नहीं जिन्ना इलाजी बैसा दका अदव सुल्तान इलाजी अदबियत की बात थी ना मासूमियत उसकी किसने अख्तियार कर इनकी मासूमियत अख्तियार करने वालों के ऊपर वाकई गालिब होगा लेकिन जो मेरी मासूमियत अख्तियार करेंगे उनके ऊपर इसका कोई बात नहीं कर सकेगा इस टुकड़े में बड़े मसले हल कर आजकल बहुत बड़े मसाइल सोशियोलॉजी के भी पैदा हो रहे हैं एथिक्स के भी पैदा हो रहे हैं इंसान के अंदर शर है ये दूर हो ही नहीं सकता शैतान इसके ऊपर गालिब होता है कहीं इंस्टिंक्ट कहते हैं इसको नहीं अलग कर सकता कहीं इन हेरिटरी जो चीजें विरासत में इसको मिल गई है उसको अलग नहीं कर सकता माहौल से जो चीजें बचपन से इसके अंदर आती हैं उसको अलग नहीं कर सकता यानी ये सारी शर की कुमत इसके ऊपर गालिब आती तो इतना के इस नतीजे में कहती हैं वो कि इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो शर के ऊपर गालिब आ जाए इंसान जाते हैं तकलीफ की तरफ है बात में से बात निकला इसमें अर्ज कर दू ये कुछ तहकीक करने वाले तो बजाहर ऐसे हैं कि जो ना ईसाई है ना बल्कि खुदा को भी नहीं मानते मुझे दो तीन है ये सारा कुछ है अपना अपना उनका अलग डिपार्टमेंट है जिसमें वो तहकीक करते हैं तहकीक करने के बाद कौन से किस्म की जो है आप देखिए जिनको हम रिसोर्स को अगर कहते हैं कहते हैं जेल में ये होता है कि ये खाली जेल होकर तहकीक करके किसी नतीजे को पहुंचते हैं अनकॉन्शियसली गैर शौरी तौर पर आप देखिएगा ये ईसाई के ईसाई रहते हैं ये ईसाइयत की थ्योरी है कि हर इंसानी बच्चा अपने माँ बाप के गुनाहों का दोष देकर पैदा होता है और वो आप सारी उम्र उसको अलग नहीं कर सकता ये बाजार अपनी रिसर्च से ये चीज करते हैं और पहुंचाते हैं उसी नतीजे के ऊपर जहां ईसाइयत के अकीदे में पहुंचा रखा था देखा आपने कितनी गहराइयों में बात जाती ईसाइयत तो हमने से हमारे दानश्वरों में से तभी जाता नौजवानों में से हर एक कंडाम करता है। ईसाइयत तो बता दी कि हर इंसानी बच्चे अपने अग्नि माँ बाप का गुना अपने साथ जाता है और सारी उम्र उसको धो नहीं करता, उसके तो खुलासे प्रदान करते हैं। और जो वितरण फर्ज कागर है ना, उनके नतज पर भरोपी के तौर पर पेश करते हैं। तो ऐसे इंसान के अंदर है जो कि तकरीबी बादशाह, उससे तो ये अलग हो नहीं सकता। सोशियोलॉजी ये कहती है, एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है, एथिकल ये चीज कहती है, डार्विन ने ये चीज कहती है, आपकी साइकोलॉजी ये कहती है। हालांकि ये वो ईसाइयत का जो गहराई में गया हुआ अकीदा है जो लोगों के अंदर, ये वो कुछ कहती है। कुरान कहता है वही धड़ल्ले से जो चीज कहता है उनको तो नहीं, बिल्कुल गलत। इन्ना इबादी बैसा बता अलैहिम सुल्तान, क्या मकाम है आदम मेरे माध्यम जो हो जाएंगे उनका सदाम तक कोई बात नहीं करेगा। क्या ये बात ही नहीं है कि इंसान के अंदर सर है और वो सर दूर नहीं कर सकता? अंदर सर की बात नहीं, जब ये खुद अपने अख्तियार इरादे से गलत रास्ता अख्तियार करता है तकलीफ होती है। जब ये मेरा मालूम होता है तो जैसे कहा जाता है उसका शान को उम्मीद से बड़े मानो से उसने कहा था ना कि मैं जो कुछ करूंगा, कहा जो तीन हुआ तो वो करके देख लिया। इतना इबादी लोग का नका आ गए सुल्तान, उनके ऊपर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। ये सारी जितनी चीड़ियां और सर्कस थे कुरान ने एक फिक्रे के अंदर उनको सबसे कंफ्यूज था सब के बारे में। चलो इंसान के अख्तियार में आगे तो कलानी में अखबार और खदाबंदी की पैरवी करो, जब वो इसकी पैरवी करेगा तो इसके ऊपर शतान का कोई बस नहीं चल सकता। जो आएगा फिर आगे इस्लाम, तो ये जो इंसान के अपने अंदर से ही कोई बात है तो जो इस तरह से उभरते और मुस्तैद होते हैं, तो एक तो वो तरीका बताया ना हमारे यहाँ, ये भी वही ईसाइयों के तसव्वुफ में जो आया हुआ है, नफ्स खुशी तुम्हारी बात सदर गलत तसव्व। पहली चीज तो ये कि ये जज्बात तो बड़ी नकार है इंसान, तो ये ना हो तो कोई कानून ही नहीं कर सकता। यानी आपके दिल में कोई आर्गू पैदा ना हो तो उसने तो इरादे में करें आप, तो आप जान कर नहीं हो सर। ये तो इंसान का अपने जज्बा है जो सब कुछ करा रहा है उसकी, सबसे बड़ी कुवत इंसान की तो ये नहीं जज्बात है। खुदा ने ये वादा किया और ये कहते हैं कि साहब मुकर्र दीन है खुदाबंदी जो है उनकी इलामत यह है कि खुदा से पैदा करता है इन जज्बात को वो मार देते हैं, मर सकते ही नहीं। करीरू न वो तीसरा कहा करता करीरू पैदे मस्तूरी न मारन, तो कहता है कि ये इन जो है इनको अगर परसों के पीछे तुम रखते हो, ये बंद करके रखते हो, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू डर बंदी दरवाजा बंद कर दो तो रोशन सर करा रही है, वो रोशन दान में भी आग लगा जाएंगे। बड़ी अजीब चीज है जो ये साहब कर दिया आज की साइकोलॉजी होता थी। तो अगर इन जज्बात को आप फिक्री तरीके के ऊपर बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे तो ये जिसे परवर्शन कहते हैं ना, ये गैर फिक्री तरीके अख्तियार कर लेंगे। कुरान में इनको मारने का हुक्म नहीं दिया, इनको तामीर में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, इनको आकाम अखबार खुदाबंदी के ताबे रखने का हुक्म दिया। यही वो चीज जो मैं कई बार बार पेश कर चुका हूँ, आज फिर वक्त क्योंकि आ गया है, फिर मैं पेश करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चमकती हुई अजीज और उसको इकबाल ने अपने अंदाज में बयान किया है। तो अजीज ये है ना मनसूब जो रसूल ने एकदम फरमाया तो हर शख्स का अपना अपना यूज होता शैतान होता है। तजुर्ब की बात सहाबा ने कहा कि क्या हजूर आपका भी एक यूज था? कल जहां हो रही थी ये वही तजुर्ब की बात थी ना पैगम्बर कि मेरा भी यूज है। कहने की फिर कहने मैंने अपने एक यूज को मुसलमान कर दिया। हाँ 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 मसला हल हो गया, इस यूज को मार नहीं सकते आप, उसको मुसलमान कर देते हैं। और जब आपके जज्बात जो हैं मुसलमान हो जाए तो फिर इतनी बड़ी कुवत दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती। बड़े हसीन अंदाज में फिर आ गई इस बात के लिए पता फिर पुष्पन और इब्लीस सारे मुश्किल है मारा नहीं आता। क्यों? जहां से वो गुम अंदर आ माँ के दिल वो तो तुम्हारे दिल की गहराइयों के अंदर बैठा हुआ है, गाँव उसको मारोगे किस तरह से, ये नामुमकिन है। खुश तो रहा बासन, बेहतरीन बात जो है मुसलमान उसको नहीं, उसको मुसलमान कर दे। अजय यही नहीं छोड़ता बात को, मुसलमान कर पाते पुष्टा हो शमशीर हो कुरान, उसको लगातार कुरान की शमशीर से लगातार, हाँ 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 कुरान की शमशीर से जब उसको रफा किया जाता है, इसको मुसलमान किया जाता है, तो फिर मोमिन की क्या काफियत होती है? होता मोमिन का चार, वो तो कहा था ना कि मोमिन के ऊपर तेरा भंजा नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया था कि कुरान ने कहा है कि ये करता ये है कि खुदा के आकाम कवानीन को इसकी निगाहों से ओझल कर देता, भुला देता है। आप बता दो सही, तो मोमिन तो वो है जिसके ऊपर ये गलबा तो बाल नहीं करता। इनमें ही नक्ता खाओ कवानीन और खुदाबंदी के लिए बर्दाश्त करने वालों की तबीयत ये होती है, मस्ता हम तारक हूँ मैं शैतान, शैतान का गंदा तो उन पर कहीं घूमते घुमाते भी वो उनके सामने से गुजरता है ना, तो उनको एहसास हो जाता है कि ये तो ये करेगा, कानून और खुदाबंदी को हमारी निगाह से उजल करेगा, घूमते घुमाते और उसके सामने कुछ गुजर जाता है तो क्या करते हैं, तड़प करूँ वो फौरन खुदा के कानून को अपने सामने ले आते। नतीजा क्या होता, क्या बात है कुरान की, फायदा हूँ मुख्य रूम, आप देखिए सारे पर्दे उठ गए उनकी आंखों के सामने हकीकत आ गई, मुख्य रूम इसमें धोखा देना था ना, इनकी जसीरत बेदार होगी, सबक करूँ तरीका ये है इसके फरोग में ना आने से हर वक्त तवारीन और खुदाबंदी को अपने सामने रखे, इस हालत में मुझे क्या हुक्म दिया गया, इस आसन से हालत में मुझे क्या करना करता चला गया, ये वजह कारण कहीं घूमते घुमाते इंसान है ना, तो इस तरह से कुछ ख्याल तक भी वहां गुजरने से जो गुजरता हुआ भी नजर आए तो वो फौरन कानून में खुदाबंदी को सामने ले आते हैं, नतीजा ये होता है उनकी आंखें खुल जाती है। अभी वाला नाम आज के दर्द के अखबार से शैतान का जो है तसव्वुर जो कुरान ने किया है, कहीं बाहर की बात नहीं, हमारे ही अंदर के जज्बात, हम ही अपने शैतान हैं, हम ही अपने इबलीस हैं, हम ही इससे गालिब आ सकते हैं। और वो ये है अखबार कवानी ने खुदाबंदी को निगाहों से ओझल न होने दिया जाए, तो ये कुछ नहीं कर सकते। किसी ने ये कहा लकुम अदूबन तब तसवी हो अदूबन, इसको दूर रखो, अदुआ के माने ये होते इनमें जब जुजबा हूँ जो यकीन मिल अफराद सही, ये जो दूर रहने वाले हैं इससे तो उनसे इसका कोई बस नहीं था, वो जो इसकी पार्टी में शहीद हो जाते हैं इन उनकी कैफियत ये होती है, तो फिर उन्हें ये जहन्नम के पास जहन्नम तक पहुंचा के रहता है। ये जो महाइबली उस समय में क्या था सबसे बड़ा शैतान, उसकी पार्टी में सुनी हो जाने वाला था, मतलब उसको भी जानने में होगा तो उसकी पार्टी का तो मेंबर ही नहीं बनता, दूर दूर उससे रहता उससे कोई बस नहीं चलता। अल्लाह जी ने कहा हम आदाब उन शदीद उन बड़ा ही सख्त तबाह उन आदाब देता, ऐसे लोगों को आता है उसके बरस अल्लाह जी ने आमन वाले इसका लिहाज बहुम तुम वाहिर उन शरीर, और जो ईमान लाते हैं और उसके बाद सलाहियत काम करते हैं उनके लिए तो उनका सिला उनका मुआवजा बहुत ही बड़ा है, मफ़रत उन हिफाजत मिल जाती है उनके शैतान के इन तमाम फर्जों से, मफ़रत के ईमान होते हैं उन कभी बहुत बड़ी किबरियाइयां उनके हिस्से में आती हैं, कुत है ना, इसलिए अजरुल करीब कहा है यहाँ कहा देखिए दोनों किस्म के इंसान सामने ले आया आसमान जुलिए ना बहू सू अमर ही करा हो हसनान, कहता ये करता क्या है इंसान, जब इंसान इसकी निगाहों से चीजों को देखता है या अपने आप को देखता है तो इसे अपनी बुराइयां भी भलाइयां बनकर नजर आने लग जाती, बहुत बड़ा फर्क है ये। اپنی خرابیاں بھی خوشنوار ان کا نظر آنا. برائی برائی نظر نہیں آتی. ایک تو یہ ہے کہ انسان برائی تو سرمت ہوئی ہے, اس کے بعد اس کو احساس کیا ہے کہ یہ برائی برا کام کیا میں, مجھے افسوس ہے, ندامت ہے, اس سے تو اطلاع ہو گئے. اور جسے وہ برائی برائی نہ نظر آئے بلکہ وہ کچھ نماز ان کا نظر آئے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا, میں بڑا صحیح کام کر رہا ہوں. چاہے جس کی یہ تفیق ہو سر آ سن پہلے یہ ابھی کیوں مائنڈ سیٹ میں پیدا کرو کہ برائی برائی نظر نہ آئے بلکہ کہ بہت اچھا کام کیا. آہستہ آہستہ کہا آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سب مجھے ان کو کچھ نماز بان سے نظر آنے لگ جاتی. یہ شروع میں مستقل طور پر مت بڑا ہو جاتا ہے تو میں بہت بڑا کام کرتا ہوں, دین کا کام کرتا ہوں, اسلام کا کام کرتا ہوں, بڑا نیک کام کر رہا ہوں سر. کہا یہ کہتی ہے کچھ کی ہو جاتی منظر ہے جو دل جب ہے وجہ کی منگا. میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو کریمہ ملے گا قرآن شریف میں, اور پھر دیکھیے ان دونوں کے اندر سے دیکھیے کہ کیا کس بیٹھتی ہے تم, کہ جو اپنی برائیوں کو بھلائیاں سمجھے, جس کو بابا نہ آئے اس کو خوشنوادن کے نظر آئے. اور تفیعت یہ ہو کہ مستقبل میں ہر بڑائی چیز کو یہی سمجھے کہ بڑائی کر رہا ہوں, میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں, اس فروغ میں مبتلا رہو. اور اس کے آگے جو یہ ہو کہ اصل میں تو اللہ اس کو گمراہ کرے بس اس کو گمراہ کر دیتا ہے, جس کو ہدایت ملے اس کو ہدایت مل جاتی ہے, کیونکہ کبھی کے ساتھ خوشیاں رہے گی سارا کچھ خدا روی ملنے کا. یہ ہے نا وہ مقام کے جہاں سے جو گندہ کے ساتھ ہے نا تو خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ ہے نا ان چیزوں کے ترجمے ہم سے کرتے ہیں. جب خداری پر آتا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا, تو وہ تو شیطان نے جیت کہا تھا کہ میں نے کہا معاف یہ کی, یہ تو آپ پر آتے ہیں. یہ ترجمہ ہمارے یہاں سے جو ہے وہ جہاں پہنچا جاتے ہیں ہم, اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہم تو پہلے کو یہ کہتا ہے کہ جس شخص کی تربیت یہ ہو کہ وہ اپنی برائیوں کو برائیاں نہ سمجھے, تو آگے وہ کو ساتھ خدا دے کے جائیں گمراہ کر کے کسی کا ہدا دیں گے. کہا یہ ہے ترجمہ یہ ہے اس کا, کہا یہ ترجمہ یہ ہے اس کا, کہ یہ بات آپ جو تم یہ کہو وہ تو سب برائیاں بھی برائیاں بن کے نظر آنے لگ جائیں, تو شیطان کی باہر کی چیز تو ہے نہیں, تو پھر گمراہی کس سے اس کو نہیں آتی ہے, کون ہوتا ہے کہتا جو گمراہ ہو جانا چاہتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلتا ہے, نہیں جا کے مان نہیں دے پاتا ہے. یہ چاہنے اس کا ہے یہ ملو ماش ہے تو قرآن کہتا ہے اپنی دنیا میں تم دیتا ہے جو وہ سنتا ہے. صحیح راستہ اختیار کرنا چاہو صحیح راستے پہ آگے, غلط اختیار کرنا چاہو اور آگے عزیز عالمان عزیز چیز آئی. جو غلط ترجمہ جو میں نے کہا تھا اس کے اعتبار سے تو اگلی بات بھی سمجھ نہیں ہے کیا بات ہے. نبی کا مقام مسلم کا مقام میں سال دیا کرتا ہوں, میں تو طبیب مشق محبت والا غمخوار ہمدرد طبیب عظیم دوائی بھی دیتا ہے اور وہ مریض کو ہدایات دیتا ہے, بڑی سخت بڑی تکلیف کرتا ہے, مریض ان کی خلاف ورزی کرتا ہے مرض برتا. تو یہ ٹھیک ہے اس کو غصہ بھی آتا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے غصہ آ گیا اور میں بگڑ گیا اس سے ناراض ہو کے تو یہ تو مر جائے گا, کیونکہ اسے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ اچھا بھلا سمجھ بات بھی میں نے سمجھنے کی تھی, اسی کے فائدے کی بات بھی کی. پھر وہ کہتا پھر وہ غصے آتا ہے, پھر وہ ان کی کرتا ہے اور زیادہ تعصب ہوتا ہے. آپ لوگ اندازہ بتائیے کہ ایک بدی کا ایک مسلم کا مقام کیا ہے قرآن میں بتایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پوری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے, ساری عمر کھلا دی انہوں نے اپنی جان ان کو صحیح راستے پہ لانے کی, ایک تباہی سے بچانے کے لیے جال میں کھاتے رہے, اونچے کھاتے رہے, پتھر کھاتے رہے, کتنی لڑائیاں لڑی انہوں نے آرام سے حملے کیے مداخلت کے طور پر, کتنی لڑائیاں ساری عمر تو آخر میں دن ہی تو ہے نہ سمجھے کتنی ہونا چاہیے تھا کہ یہ صورت ہے جاج ہم نے مجھے کیا, یہ نہیں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا میں تم سے کوئی اس کا بدلا ہی نہیں مانگ رہا, کوئی اگر نہیں تم سے میں مانگ رہا تمہاری خاطر سے کر رہا ہوں, لیکن طبیب ہے بڑا مشکل خدا کو یہ چیز کہنی پڑی کہ بلا تب ہر لفظ کا حل ہی خطرہ ہے اپنی جان کیوں سے گوا رہا ہے کیوں کھول رہا ہے اپنی جان ان کو ہم اب پہلی بات جو تھی وہ سمجھ میں آ گیا پہلے اگر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خدا جو گمراہ کرتا ہے خدا جو ہدایت دیتا ہے تو نبی کو اپنی جان گھمانے سے کیا فائدہ تو نبی کو جانتا تھا نا تو خدائی پر آ رہا ہے تو وہ تو ان کو مجرم نہیں سمجھتا تھا تو ان کی خاطر وہ اپنے جان کے لیے کیوں بات لے رہا تھا دیکھا آپ نے بالکل رس نہیں ملا کہا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو سب کچھ سمجھا دیا ہے سمجھ میں بات آ گئی ہے جو ایسے بے دارا نہیں جاہل نہیں ہے سب کچھ سمجھ تو نے ساری عمر سمجھا بھی دیا آپ اگر اپنے اختیار و ارادے سے جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اب تم کیا کر رہے گا ان کو تو کیوں اتنا غم کر رہا ہے ان کی خاطر جو اپنے اختیار سے مرنا چاہتا ہے گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر تو یہ غم کی بات نہیں ہے غم نہیں ہے ایمان من یہ بس تو ترجمہ ہی نہیں قرآن ایمان من حسرات کا لفظ اللہ تب ہر لفظ کا الگ ہوں حسرات نہیں حسرت بھی جمع ہے کی نہیں جمع ہے اس کی اب میں حسرت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ایک بات کے ذہن کیوں سمجھا سکتا اگر میں عرض کروں تو یہ بازی کا تو ہوتا کیا کسی چیز کے انتظار میں کرتے کرتے انتظار کرتے کرتے انتظار تھک جانا اس حکمے سے جو تکان پیدا ہوتی ہے اب سردی پیدا ہوتی ہے شدت کے انتظار اور لمبا عرصہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے نا پھر انسان وہ جو اس تکان سے سردگی پیدا ہوتی ہے اسے حسرت کہتے ہیں تو کتنا لمبا عرصہ تھا جو حضور نے انتظار کیا انتظار میں تو اب بھی بچ گئے اب بھی بچ گئے سکتے گئے سکتے آخر میں جا کے ان کی اس تباہی سے تجھے نہیں بچ سکتے کوئی تفصیلگی کی بات یہ ہے وہ تحقیق یہ ہے جس کو حسرت کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ نئی بات سمجھا دوں جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں جو بے بس ہو کر رہ جاتی ہیں دل چائی ہوئی نظریں انہیں حسرت بنا کے ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے چائی ہوئی نظریں بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں انہیں حسرت بنا کے یہ ہے وہ للچائی ہوئی اس بات کی للچائی ہوئی نظروں کی کرتی تو یہ بچ گئی کسی طرح سے آخر میں بے بس ہو گئے نہیں بچ اس نے بھی یہ نہیں بات تم کی بات بھلا دے گا کہ کیا تمہارا بھلا دے نہ وہ دلی رکھی ہوئی ہوتی بے بس ہو یہ تو اصیت دے جاتی ہے انسان بات آ جاتی ہے بارہ کبھی کبھی کچھ شیر کیا جاتا غالب نے دو تینوں کا یہ فرق کیا جو کچھ صاحب کا تمنا آرزونی تھی ان میں ناکامی وہ حسرت آنے والی زندگی کے متعلق کچھ تمنائیں سن کر بھی پتا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک دم حسرت سمجھانا ہے کس قدر خوبصورت انداز میں پتا میری زندگی پوچھتا ہے میری زندگی آئندہ ہو گزشتہ تمناؤ حسرت گزشتہ کی ساری زندگی حسرت آئندہ کی ساری زندگی ایک تمنا تھی آئندہ ہو گزشتہ تمنا ہو حسرت یک کاش کے بلب کے بعد سب جا نہیں پائیں کاش کاش یہ ہو جاتا ایک کاش یہ ہو جاتا ایک کاش یہ ہو جاتا میں تو ساری عمر ہر جگہ ایک کاش لکھتا لکھتا اثر مرنے کو ہے جس کی ناؤمیدی اس کی دیکھا تھا یہ دیوانے بات یہ ہے وہ عذاب جہنم کے جس کے اندر سے نکلنے کے لیے قرآن کہتا ہے تم ہزار بار ارادے بھی کرو تو نہیں نکل سکو لیکن یہاں تو حسرت کا بھی کرا جو رسول کو کل دے دیتا ہم نے پیدا ہوئی تھی ان کی تباہیوں کی وہ سزا سب ہم لگ سے کہا گئے مبارا یہاں کہا تھا نا وہ بات آگے وہ کہا تھا نا کہ لگا لو تو اللہ تم دلّا ہو لگ یہ تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کے نام کی آڑ میں کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ سنیے کیسے دھوکہ دیا. ان اللہ علیم بلا جسمعون, جو کچھ جو کچھ ہم نے ان سے کہا تھا مولانا خداوندی اور دار خداوندی وغیرہ جو ہے نا, اس میں وہ مصنوعی طور پر کچھ بنا دیتے ہیں. حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا, شکلیں ان کی ویسی کام رکھتے ہیں تو سمجھنا ہوتا ہے مصنوعی تو ہم سمجھتے ہیں نا, یہ لفظ ہوتا ہے. کہتا ہے وہ ان چیزوں کو ان کے اندر مصنوعی بنانا کچھ نہیں باقی, ڈھانچے ان پر کھڑا رکھتے ہیں, مصنوعی طور پر یہ بنا دیتے ہیں. یوں دھوکہ دیتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے عظیم الان, جھوٹ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا اگر وہ جھوٹ بن کے سامنے آئے. ایک طرف آپ سے بہت بڑے سر پر چلا جائے, امیدیں بنا کے سب نے کھا کے اعتبار جما کے اپنا جاتے وقت یہ کہو کہ بھائی سب کچھ ٹھیک جو کچھ ہم نے کیا ہے نکلی بھی, لیکن میں نے جو بھی تم سے کہا تھا جھوٹ گایا تھا, تو اس کے دھوکے میں آ جاؤ گا. تو جاتے وقت بھی قرآن اٹھائے گا کہ میں نے سچ تھا. جھوٹ بے نقاب ہو کر کامیاب ہو نہیں سکتا, اسے سچ کے لباس میں کام کرنا ہوتا. یہ وہ دین مذہب میں بدلتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا رسول نماز روزہ حج زکات صاحب وغیرہ جو ہے ان تمام کو اٹھا کے بھائی دے, کچھ نہیں ہے. یہ تو مجھے تو بے دین ہوتا ہے, انکار کرتا ہے, قابل ہے. اس کے دھوکے میں کوئی نہیں آتا, دھوکے میں اس کے آتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا جو مقصد تھا وہ نگاہ سے توڑ کر دے, روح ان کے اندر سے نکال دے, خالی ان کے ڈھانچے کھڑے کر دے, ان سب چیزوں کو مصنوعی بنا دے. مصنوعی بنا کے خدا کے نام پہ دھوکہ دے سکتا. کیا بات کیا گیا قرآن, ان اللہ علیم بما یصنعون. کہا ہے تمہیں بتاؤں کہ یہاں بھی انتہائی مایوسی کی کوئی بات نہیں. اگر ذرا سا بھی انسان تھوڑی سی بھی رمت ان کے اندر زندہ رہنے کی ہو, سیدھی زندگی مل سکتی. اگر یک کترا خون ڈالی, اگر مشتق کرے ڈالی, کچھ زیادہ سازو سامان کی ضرورت نہیں. ایک کترے خون خدا کی راہ میں لینے کے لیے تھوڑے سے بالوں تک اگر یک کترا خون ڈالی, اگر مشتق کرے گا, بلا من لا تو آموزم طریقے سے آبادی رہا, میں تو اسے آباد بنا سکتا ہوں سر, اتنا سا سامان لے کے کسی آ جائے, لیکن اگر وہ یک کترا خون بھی اندر نہ رہے, پھر موت ابدی موت. قرآن کہتا ہے کہ اتنی سی بات اگر زندہ رہنے کی صلاحیت تھوڑی سی بھی باقی ہو تو ہمارے یہاں سے تو سامان بڑا سرانا ملتا ہے. ورنہ ہم بھی عرض کر دیا ہے سب تصویر و صحابن تشف نہ ہو رہا بڑا دن بھیا تم, تو ہم کیا کرتے ہیں سمندروں سے کیا بول رہا ہے. دیکھیے یہ وہی کی تصویر کافی خوبصورت ہے, آسمان سے ہوا وہ تو سمندر کے اوپر ہی ہے, اور اگر وہی کی ہی ٹھنڈی ہوگی برف نہیں تو وہ سمندر کا پانی سمندر میں برف گیا تو ہوا کیا؟ کہتے نہیں, پھر ہم ہوائیں بولتے ہیں جو ان بادلوں کو جہاں سے لیے جاتی ہیں دوسرے مقاموں کی طرف جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان مہینوں کی طرف ان بستیوں کی طرف جہاں میت نے کہا بلد مرغے. مرغا لفظ ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے, عربی زبان میں یہ آخری لفظ یہ ہوتا ہے جہاں وہ مردہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے پہلے ان کے یہاں یہ چیزیں ہیں. حرارت تو ہے لیکن وہ بڑی خاموش کی ہو, سوئی ہوئی حرارت جس کے آس پاس میں ہے نا, یا بامیوڑ کی ہوئی کوئی چیز تو ہوتی ہے. ان کے یہاں مثلا شراب میں پانی زیادہ ملا دیا گیا تو اس شراب کو مردہ کہتے ہیں, تھوڑا سا نشا ہوتا ہے آدمی آگے مردہ ایسی زمین کی طرف دے جاتے ہیں کہ آئے نہ موت ہے. یہ وہ موت نہیں ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان ہی نہیں رہا. یہ زمینیں جو ہیں بارش جب برستی ہے تو جس نارانی زمین میں کھیتی اگانے کی کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اس میں سے کھیتی کی نمود ہو جاتی ہے. ریبت ٹانگ کے اندر وہی بادل برستا ہے اس میں سے کچھ نہیں, ईमानों में मुर्दा वो हुजूरी होती है कि जिसमें जिंदा होने का इम्कान बाकी न रहे। ये जो मिसाल कुरान ने दी है कि जमीन मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाती है, तो दोबारा जिंदा वो जमीन होती है जिसमें जिंदगी की कुछ भी नमूद और रमक जो है जो बाकी रही है। तो जिस काम के अंदर जिंदा रहने की कुछ भी आरजू या तमन्ना या सलाहियत या कुत मौजूद हो, वो अगर सुधार के इस सामान से जिसे उसने बारा में रहमत का जो उतारा है, वही की रोशनी में अगर वो अपने निजाम को दुरुस्त कर ले, तो ये वो रजत नहीं है जिसमें से लह रहाती हुई खेतियाँ उठेंगी। कहा सवालों पर मुझे होगा जो हजारत आदम अदा कैसे हो जाती है, कहते उस किस तरह से हो जाती है, वो जो उठता है जिंदगी जोड़ता है वो वही उठता है जिसमें उसमें की सलाहियत बाकी होती है। जो फिर वाकई मर चुका होता है जिसे हम कहते हैं, या वो जमीन जिसमें जो सलाहियत होती नहीं है उसको बारिश कुछ नहीं करती। तो सवाल यही है कि अगर काम उस मरहले में जा पहुंची है तो जहां इसमें जिंदा रहने की सलाहियत बाकी नहीं रही, और सलाहियत का रहने या ना रहने का सबूत जो होता है वो आरजू होती है। माँ तकलीफ नकाफत जिंदा है, अब शुआए आरजू का जिंदा है, दिन में जिंदा रहने की अगर आरजू है तुम्हारे दिल के अंदर तो इम्कान है कि तुम जिंदा हो जाओ। अगर आरजू ही मुर्दा हो गई, कबर सामान का गंदा करिए, मरने दो तो पहले मरिए, यहाँ जिंदा नहीं हो सकते। सुबह को बनाने की पुष्ट लकड़ी जो है वो भी जो बाहर रख सकती, गिरी हुई लकड़ी जो पानी में पड़ जाए वो गल जाती है, सड़ जाती है, वो कभी जिंदा नहीं होती। ये तो सब राज जो हमसे आप चिमट गए हैं मरने से तो पहले हमारी है, ये वो है सड़ी हुई गली हुई लकड़ियाँ हमारी जो पानी में पड़ी हुई, वरना खुश्क लकड़ी और दरख्त के साथ रहे तो उसे हुई जो बाहर डाली गई जो फसलों सजा में सजर से की नहीं हरी हो सहादे सहाद से अपूरी नजम अमंडल के साथ राज का इस सवार व्यवस्था रहे सजर से होगी जो बाहर जिंदा होने की सलाहियत बरा थी और व्यवस्था का सदस्य ये शजर तंजीब जो कुरान का है इससे सवस्थ की जो जरूरत की है उन्हीं जो बहार था नई गरीब इज्जत और खरीदा इज्जत जमीन क्या लग रहा है क्या बात है। अरे घबरा हुआ हो तो बहुत तख्त है, बहुत कमजोर है, बहुत लापरवाह है, क्या कह रहे हो, रंगा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तकलीम चाहते हो, कुमत चाहते हो, चाहते हो समझना हूँ इज्जत जमी कोई बात नहीं, पूरी की पूरी कुमत और सवानाइयाँ खुदा के सवानीन के साथ है। वक्त जरा थोड़ा है अभी बदलने के लिए जो धनी वक्त आते थोड़ा हुआ छोटा करना चाहेंगे हो ही गया है, बाद आगे बढ़ रहा हम आती तो फिर ये इस किस्म की काम जो खुद वापस मर तो न चुकी हो मुर्गी छा चुकी हो क्या जिंदगी आरजू की अभी इसमें देखा है, तो उसमें से फिर से हया तो नाव पैदा कैसे हुआ, उसे फिर से वल्दा इज्जत तकलीम कैसे मिल सकती है। ये पहले तो जो असूल कहा है ना रामकुर नामीद न थे, अगर वो जमीन ऐसी है तुम्हारी जिसने कुछ भी सलाहियत है उसने की तो फिर आओ मान काना जरूर इज्जत अफलिंदा इज्जत जमीन हमारे पास है, बड़ा मन बात हुआ लोगों कोई के साथ आजी लेकिन वो कैसे हासिल होगी ये इनकी आस्था अगला दिख रहा है और ये प्रोग्राम जरा लंबा भी है गौर से समय न दी है, इसलिए उसे हम आइंदा तक उठा रखते हैं। सूरह और साकुर की आयत न हो चुके हाँ ठीक है, दसवीं आयत से हम आएंगे जब बना तब मिलना इन्ना संतुष्ट।